संबंध, जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कारण की हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ माने जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। व्याख्या, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। यहां भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है, मुझसे तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ ये प्रमाथी भी है, अर्थात ये साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। ये बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। गीता का 3रा अध्याय, 40वां तथा 34वां और दूसरे अध्याय का 59वां। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में तो इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता, तब तक ये काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता है, पर वह जब स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहां मन को प्रमाथी बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती है। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथी बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। परंतु मन में ये प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता, फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परामृतम्। अर्थात देहाभिमान माने जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर, जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि सहज समाधि रहती है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस चंचल प्रमाथी दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। परिशिष्ट भाव। भगवान ने 29वें श्लोक में स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया और 30वें से 32वें श्लोकों में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोकों में भगवान का आशय यह था कि सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है। परंतु अर्जुन के भीतर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे ध्यान योग का संस्कार बैठा था, अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, प्रत्युत मन की चंचलता की तरफ गई, अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया।